कर्णवास प्रातःकाल जेठ सुदी एकम संवत 1995 30/5/38 सबसे ऊंचा पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर लेने वाला ही है। ये बात सभी को ध्यान में रखना चाहिए। इसी शरीर में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। हम प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं, चाहे कोई सा ही आश्रम हो। गृहस्थ आश्रम में प्राय लोगों को वहम होता है कि हम तो गृहस्थी हैं, हमको परमात्मा कैसे मिलेंगे। यदि परमात्मा की प्राप्ति में गृहस्थ आश्रम बाधा देने वाला होता तो भगवान कभी अपना गृहस्थ नहीं बसाते और गृहस्थ आश्रम की रचना ही नहीं होती। अर्जुन कौन सा गृहस्थ आश्रम में नहीं था, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम में नहीं थे। गृहस्थाश्रम में मनुष्य अपने धर्म का अच्छी तरह पालन करे तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। यदि गृहस्थाश्रम में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो भगवान अर्जुन को एक वाक्य में बोल देते, अर्जुन तू क्यों कल्याण की इच्छा रखता है, गृहस्थाश्रम में तू है, तेरा कल्याण नहीं होगा, बस। पर ऐसा भगवान नहीं कह सकते। सभी को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम करना चाहिए। तीर्थों में आते हो, तीर्थों का भी अपराध करते हो। सत्संग में जाते हो, सत्संग का भी अपराध करते हो। फिर अपना कल्याण करना चाहो, दोनों का मेल ही नहीं है। तीर्थों में स्नान करना करने की बड़ी महिमा है, परंतु गंगा जी में जो गंदगी करते हैं वो बहुत बड़ा भारी पाप के भागी होते हैं। गंगा के तट से 100 पैर दूर पेशाब करना चाहिए और उससे दुगुना दूर टट्टी जाना चाहिए। धोती गंगा जी में निचोड़ी नहीं चाहिए। स्त्रियों का परम धर्म है कि अपने पति के सिवा कुछ न समझे। जो स्त्री सुहागिन है, पति के जीते जी उपवास इत्यादि करती है, तो ये उचित नहीं लगता है। सीता जी ने तो हनुमान जी के कंधे पर भी चढ़ना अंगीकार नहीं किया। जो सीता जी को मां कहते थे और अपने को राम जी का सेवक मानते हैं, वे हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि मां इतना कष्ट पाती हो तो आ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। पर सीता जी ने कहा ये पातिव्रत्य धर्म नहीं है। हनुमान जी ने भी सीता जी के चरण छूकर के प्रणाम नहीं किए, दूर से ही प्रणाम किया। इसी प्रकार स्त्रियों को अपने घर में जो पुरुष हैं जिनको प्रणाम करना जरूरी है उनको दूर से ही प्रणाम करो, छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का अपना एक तेज होता है, उसके अंदर अपने गुणों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है, इसलिए स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पुरुष को भी चाहिए कि वह हर स्त्री का स्पर्श न करें। हमारे शास्त्रों ने कितना सावधान किया है, अपनी जवान बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। शास्त्र सावधान करते हैं, स्त्रियों को चाहिए कि वे शिवलिंग की पूजा नहीं करें। पूजा के लिए तो स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है। अपने पिता, अपने बड़े भाई या किसी संत महात्मा को भी प्रणाम करना हो तो दूर से करें, छूकर नहीं करें। जब तक पति का शरीर है उसे पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो स्त्री पति को छोड़कर किसी और को गुरु बनाती है वो सीधी नरक में जाती है। इसीलिए सेठ जी से बहुत साधु संत नाराज रहते थे। जो स्त्री पति को छोड़कर गुरु बनाती है वह सीधी नरक में जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सही है, जो ऐसा कहते हैं कि बिना गुरु के ठीक नहीं, जीवन में गुरु नहीं बनाया तो क्या किया, गुरु बनाओ, दीक्षा ले ओ, हमारे चेला बनो, चेली बनो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसे को तो ऐसी की तो कभी भी आज्ञा नहीं माननी चाहिए। स्त्री के लिए स्वतंत्रता नहीं है, न स्त्री स्वातंत्र्य मर रहती। इसका अर्थ स्त्री को पराधीन बनाने में नहीं है। नियमों में अधीन रहो, नियमों के उल्लंघन में स्वतंत्रता मत दिखाओ, ये स्वतंत्रता नुकसान करने वाली है। और नियम न्याय शास्त्र के अधीन, पति के अधीन, ये पराधीनता नहीं है, ये बहुत बड़ी स्वाधीनता है। यदि पति उपवास न करता हो तो स्त्री को बिल्कुल उपवास भी नहीं करना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि अपने पति की आज्ञा भंग करके, आज्ञा तोड़ करके यदि कोई स्त्री सत्संग के निमित्त भी जाती है तो उसका कल्याण नहीं होगा, नहीं हो सकता है। यदि कोई स्त्री अपने पति का ऊंठा भी खाती है तो कोई बात नहीं, किंतु आजकल के जमाने में ये ऊंठा खाना अच्छा नहीं है। कोई संत महात्मा हो कि इनका ऊंठा प्रसाद हमको मिल जाए, ये बिल्कुल अनुचित बात है। किसी साधु संत का ऊंठा मत खाओ, बस केवल परमेश्वर को छोड़कर उसके लगाए हुए भोग के अलावा किसी का भी भोजन मत करो। मतलब ऊंठा भोजन मत करो, ऐसे इसमें तात्पर्य है। एक परमात्मा के चरणों को छोड़कर किसी का भी चरणामृत भी मत ले। हम बहुत बड़े महात्मा हैं, लो साहब हमारे चरण धो, चरण हो नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मत है। कोई इसमें नाराज हो चाहे राजी हो, मैंने तो मेरा मत कहा है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि उसको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा, यह भी मेरा ही मत है। समय का ख्याल करो, कैसा समय आ रहा है, लोगों की वृत्तियां कितनी जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए इन बातों को आप कीमत दो। जिन बातों का मैं निषेध कर रहा हूं ये सब पतन के कारण है, इसलिए मना करता हूं। हर एक भाई को, हर एक साधु को, हर एक ब्राह्मण को यह कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि कभी भी न स्त्रियों को चरणामृत दे और न कभी अपना ऊंठा देवे। खुद भी नरक में जाओगे और स्त्रियां भी नरक में जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता ने साफ कहा है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत है। जो शास्त्र के विपरीत काम करता है वह कभी भी कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी कहे कि चरणों के जलपान से तो मुक्ति होती है, बड़े पुरुषों का चरणों का जल पड़ा कहां है, उनकी चरण धूलि से हम लोग पवित्र हो जाते हैं, शास्त्र में भी लिखा है कि चरणों की धूलि से मैं पवित्र हो गया, चरणों के अंदर मैं लुढ़क गया चरण धूलि में, ये मेरी समझ में तो बिल्कुल अविचारित काम है। जिनका हुआ उनका युग, उनका समय, उनका भाव, वो उन्हीं के साथ गया है, परंतु जिस बात का निषेध हो जाता है उसके ऊपर ख्याल करना चाहिए। यदि मैं किसी को झूठा खिलाकर मुक्ति देने की सोच भी लूं तो सबसे पहले नरक में मैं जाऊंगा। इसलिए यदि आप कल्याण चाहते हैं तो शास्त्र के अनुसार काम करो। शास्त्र के विपरीत कोई भी काम करता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। श्रीमन्नारायण नारायण।